प्रभु की यादों से सफल कर ले।
ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के गॉडली स्टूडेंट हैं, लौकिक पढ़ाई में भी बच्चों की जो किताबें होती हैं उन किताबों में इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर दिए होते हैं। परीक्षा के दिन नज़दीक आते हैं तो बच्चे ऐसी प्रश्न उत्तर वाली किताबें खरीदते हैं और उनमें उन प्रश्नों को याद करते हैं जिन प्रश्नों के आगे हाथ का निशान दिया होता है। आपने देखा होगा हाथ का निशान देकर के लिखा होता है इम्पोर्टेंट या वेरी इम्पोर्टेंट, और फिर लिखा होता है कि ये फलानी यूनिवर्सिटी में 1971 में भी आया, 72 में भी आया, इतनी बार ये प्रश्न आया, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और देखने में आता है कि कई बच्चे तो पूरा सिलेबस पढ़ते ही नहीं हैं और वो हाथ वाले प्रश्न उत्तर याद कर लेते हैं और अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। तो ऐसे ही हमारी पढ़ाई के भी जो बहुत ज़रूरी पहलू हैं उनमें से सबसे ज़रूरी ये तीन बातें हैं: अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। इसलिए हमारा सुप्रीम टीचर बार बार इन्हीं पाठों को याद कराता है, बच्चे ये पेपर में ज़रूर आएंगे, इनको याद कर लो। लौकिक दुनिया में बच्चे को क्वेश्चन बताए नहीं जाते हैं, लेकिन अलौकिक दुनिया में बच्चों को पहले से सारे प्रश्न पता हैं और उनमें ये तीन तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तो बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ ड्रामा की नोंद के अनुसार हो रहा है, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, सब कुछ पहले से निश्चित है। कहते हैं अनहोनी तो कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि जो अनहोनी होती है वो होती नहीं है, और जो हो जाती है उसको अनहोनी नहीं कहा जा सकता। तो अचानक तो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है ड्रामा में पहले से निश्चित है। फिर भी अचानक शब्द बार बार क्यों प्रयोग किया जाता है? जो लोग सावधान नहीं होते उन्हें कई बातें अचानक लगती हैं, और जो सावधान होते हैं उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है। अब जैसे अपन सड़क पे कई बार चल रहे होते हैं, ध्यान कहीं होता है, और चलते चलते अगर पांव कहीं टकरा जाए तो मुंह से क्या निकलता है? अचानक ये पत्थर आया और मेरा पांव टकरा गया। पत्थर अचानक थोड़े आया, पत्थर तो अपने समय पर आया और जहां उसको आना था वहीं आया। पर वो अचानक क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था, हम तो ये सोच के चल रहे थे कि सड़क सीधी है, इसमें ना उतार है ना चढ़ाव है, लेकिन सड़कें हमेशा सीधी नहीं होती, उनमें बहुत कुछ खुरदुरा भी होता है। तो जो व्यक्ति ये मान कर के चलता है कि सड़क पे कहीं भी कुछ भी आ सकता है, वो धरती की तरफ देख कर के चलता है, सावधानी से चलता है, पांव सावधानी से उठाता है। और जो ये मान कर के चलता है सड़क सीधी है, कुछ होने वाला नहीं है, वो फिर दाएं बाएं भी देख लेता है और फिर अचानक कुछ भी आता है। कई बार हम दूध उबालते हैं, बहुत देर दूध के पास खड़े रहते हैं, कुछ होता ही नहीं है, फिर कहते अचानक उबल गया, पता ही नहीं पड़ा। दूध अचानक थोड़े उबला, अपने समय पर उबला, जब पूरा गर्म हो गया तभी उबला। पर हमको अचानक क्यों लग रहा है? इसलिए कि हमारा ध्यान हट गया। पहले तो बहुत देर तक देखा, फिर जैसे ही ध्यान हटा दूध उबल गया। अचानक नहीं हुआ, लेकिन ध्यान हटाना नहीं चाहिए था। जहां इतनी देर ध्यान दिया, थोड़ी देर और ध्यान दे लेते तो अचानक ना लगता। खिलाड़ी जब मैदान में खेलता है तो उसको क्या कहा जाता है? भाई सावधान रहना, बॉल अचानक आएगी। बॉल अचानक तो नहीं आती, जब दूसरा खिलाड़ी फेंकता है तभी आती है। लेकिन अचानक का मतलब ये है कि बॉल उसको बता करके नहीं आएगी। सामने वाला व्यक्ति उसे बताएगा नहीं, भाई तुम सावधान हो जाओ, मैं बॉल फेंक रहा हूं। और इसलिए उस खिलाड़ी का ये कर्तव्य है कि वो बॉल के ऊपर अपनी दृष्टि गड़ा करके रखे, कभी भी आ सकती है। उसने जरा सा ध्यान हटाया, बॉल आ गई और वो कैच नहीं कर पाएगा, फिर बोलेगा मैं क्या करूं, अचानक आई। तो ये अचानक शब्द सावधानी का प्रतीक है। सावधान होने के लिए इस शब्द को बाबा बार बार यूज करते हैं। जो सावधान है उसके लिए कुछ भी अचानक नहीं है। लेकिन जब हम अचानक की याद करते हैं तो सावधान होने में मदद मिलती है। अचानक का क्षेत्र बहुत विस्तृत है मानव जीवन के हिसाब से। अचानक शरीर को कुछ हो सकता है, अचानक कोई नजदीकी व्यक्ति जा सकता है, अचानक बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, अचानक सरकार की पॉलिसी बदल सकती है, अचानक प्रकृति परिवर्तन हो सकता है। और अलग अलग क्षेत्र वालों के लिए अलग अलग बातें अचानक होती हैं। अचानक ट्रांसफर हो सकती है, अचानक प्रमोशन हो सकती है, अचानक डिमोशन हो सकती है, अचानक महंगाई बढ़ सकती है, अचानक मंदी आ सकती है। कितनी सारी बातें हैं। अचानक का क्षेत्र तो बहुत विस्तृत है। इतने बड़े संसार में पता नहीं कब क्या अचानक हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, नाटक का जब एंड होता है तो घटनाएं बड़ी तीव्र गति से परिवर्तित होती हैं। जब शुरुआत होती है कहानी की तो उसमें वृद्धि होती है। एक राजा था, जैसे रामायण की कहानी चालू होती है, राजा था, उसके बच्चे थे, बड़े हुए, गुरुकुल में पढ़े। कोई बहुत तीव्र गति के परिवर्तन नहीं है। लेकिन जब राम वनवास में जाता है, सीता चोरी हुई, फिर ढूंढा, फिर पुल बनाया, उसके बाद युद्ध किया, युद्ध में भी कितना तीव्र गति से परिवर्तन होता है। कभी वो अपनी चाल चलते हैं, कभी ये अपनी चाल चलते हैं, कभी लक्ष्मण मूर्छित होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो जब ड्रामा का एंड आता है तो घटनाएं तीव्र गति से नया नया मोड़ लेती हैं। तो ये भी ड्रामा का एंड है। और एंड में कई रहस्य खुलते हैं और घटनाएं इतना तीव्र गति से बदलती हैं, क्योंकि ड्रामा का एंड करना है। बदलेंगी तब तो एंड होगा, अगर घटनाएं खड़ी रहेंगी तो एंड कैसे होगा? इसलिए जब सुबह उठें तो ये स्मृति रख करके उठें कि ड्रामा का एंड है और कुछ भी हो सकता है। कहानी की समाप्ति हो रही है, कुछ भी हो सकता है, कहानी समाप्त होने वाली है। कई बार कई भाई बहने दूसरों को कहते हैं अचानक सब कुछ होगा, लेकिन अपने बारे में ये सोच के बैठ जाती हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। एक बार एक माता जी थी, बाबा की बड़ी अच्छी बच्ची, निश्चय बुद्धि। 5 लाख उसको रुपए मिल, संसार का तो नियम है जो आता है वो जाता है, ऐसे उसको धैर्य दे रही थी। इतनी देर में जोर से हिचकी आई, एक खून की उल्टी हुई और वहीं बैठे बैठे आत्मा उड़ गई। अब घर वाले तो इंतजार कर रहे थे कि पड़ोसियों को धीरज देकर के अब लोटी के लोटी, अब लोटी के लोटी, लेकिन वो तो लोटी नहीं, घर वाले लेकर के आए। अब उसके 5 बच्चे थे, पांचों को पता था माँ का 5 लाख है, लेकिन पैसा एक के पास रखा हुआ था और उस एक को कान में कहा हुआ था कि ये पैसा तो बाबा का है, बाबा को ही देना, बस एक को बताया हुआ था। अब पांचों ने मिलके मीटिंग की, भाई चलो अपन 1-1 लाख ले लेते हैं, लेकिन जिसके पास रखा था उसने कहा नहीं, मेरे को तो कह के गई थी आश्रम का है पैसा। तो सारों ने कहा देखा, माँ के जाते ही इसकी नीयत डगमगा गई, माँ ने इसको कब कहा, अगर कहती तो हमको भी ना कहती। और उस 5 लाख के बदले पांचों भाई बहनों में और खास करके जिसके पास रखा था उसके प्रति सबके मन में कड़वाहट आ गई, बोलचाल बंद हो गई, आना जाना बंद हो गया। अब माता जी का पुण्य का पैसा, पुण्य में लगाने का पैसा भाई बहनों में क्या कर रहा है, झगड़ा पैदा कर रहा है, बोलचाल बंद करवा दी। अरे पुण्य का पैसा तो नाराज लोगों को भी मना देता है, जिनका झगड़ा हो झगड़ा भी मिटा देता है, लेकिन ये कैसा पैसा था जिसने भाई बहनों की बोलचाल बंद करा दी, आना जाना छुड़वा दिया। क्यों? क्योंकि वो ये पाठ भूल गई कि जीवन में बहुत कुछ अचानक घटता है, और जिसको अचानक का पाठ याद होगा वो भविष्य की पहले से ही योजना बनाएगा, 20 साल बाद की बातें आज समझ जाएगा, 50 साल पहले की योजना भी अब भी बना लेगा, वो सुखी रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं शरीर नश्वर है, संबंध नश्वर है, वातावरण हलचल वाला है, जो करना है वो अब कर लो। कब शब्द ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, करना है वो अब करना है, कब नहीं करना है, एक कब शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। जिसको अचानक याद रहता है वो एवर रेडी रहता है, अचानक कुछ भी हो सकता है, मैं एवर रेडी रहूं, मैं तैयार हूं। एक बार हम लोग एक कंटोनमेंट एरिया में गए थे, आर्मी का एरिया, तो हमने देखा बहुत सारे आर्मी के जवान, युद्ध के जो अलग अलग प्रकार के शस्त्र थे, अस्त्र थे, टैंक थे, उन सबको खोल रहे थे, उनमें ग्रीस दे रहे थे। तो हमने उनको पूछा, भाई युद्ध तो होने वाला नहीं है, हमने तो समाचार सुना नहीं युद्ध का, और आप लोग, वो एक एक उसके ऊपर टैंकर थे ऐसे, शायद गोले वोले फेंकने वाले थे कुछ थे, 10-10 लोग एक एक को ठीक कर रहे थे, बहुत बड़ा ऐसे आंगन था, एक मशीन पे यहाँ 10 लोग खड़े हैं, एक पे यहाँ 10 लोग खड़े हैं। तो हमने कहा भाई हमने समाचारों में तो पढ़ा नहीं, युद्ध की तो कोई आशंका नहीं है, तो आप लोग क्यों इतना चुस्ती के साथ इन पे लगे हुए हो? तो उनमें से जो एक सीनियर व्यक्ति था उसने कहा बहन जी युद्ध हमको कह के थोड़े आएगा कि तुम अपने टैंकर ठीक कर लो, मैं आने वाला हूं, वो तो अचानक आता है, और अचानक के लिए तो एवर रेडी रहना पड़ता है। तो हम दिन हो या रात हो, कैसा भी समय हो, हम बिल्कुल रेडी रहते हैं, अपने सब अस्त्र शस्त्रों को बिल्कुल रेडी रखते हैं, कोई को जंक लग जाए या कोई पड़ा पड़ा बेकार हो जाए ऐसा नहीं होने देते हैं, भले युद्ध हो चाहे शांति हो, लेकिन हम एवर रेडी रहते हैं। तो उसकी जब ये बात सुनी तो जैसे बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे आप भी रूहानी आर्मी हो, तो जब वो जिस्मानी आर्मी वाले एवर रेडी रहते हैं तो रूहानी आर्मी वालों को तो कई गुना ज्यादा एवर रेडी रहना चाहिए, अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखने चाहिए। ऐसे नहीं समय पड़ा है, कभी भी हो जाएंगे। जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा कहा करते थे, बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी। और बच्चों ने भी मान लिया, बाबा अगली दिवाली नहीं आएगी, सब समर्पित हो गई। और बाबा ने दिन रात बच्चों को तपस्या में लगा दिया, बच्चे विनाश होने वाला, अगली दिवाली नहीं आएगी। कई भाई बहन कहते, बहन जी उसके बाद तो कई दिवालियां आ गई और बाबा अभी भी कहते हैं कि बच्चे समय बहुत कम है। 73 बरस गुजर गए, 73 बरस कोई कम होते हैं, और फिर भी बाबा कहते हैं समय कम है, इसका क्या राज है? वास्तव में एक ही शब्द के अलग अलग रेफरेंस में मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को 2000 किलोमीटर का सफर करना हो, 1000 किलोमीटर जाना, 1000 किलोमीटर आना, और अपनी गाड़ी में अपन ने जो उसकी टैंकी है उसमें 40 लीटर डीजल आ गया, फिर भी अपन क्या कहते हैं, बस डीजल तो थोड़ा है, बहुत कम है, काम नहीं चलेगा। और अगर अपने को केवल 100 किलोमीटर जाना और आना हो और गाड़ी की डिक्की में, गाड़ी के उसमें, डीजल के टैंक में 40 लीटर डीजल हो तो अपन क्या कहते हैं, अरे बहुत है, तो बहुत सारा है, इतने का क्या करेंगे, इससे आधा हो तो भी काम चल जाए। तो पहली अवस्था में वो थोड़ा लग रहा था और दूसरी अवस्था में वो बहुत ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों परिस्थितियां अलग अलग। तो जब व्यक्ति को काम ज्यादा करना हो तो समय कम लगता है, और जब थोड़ा सा काम हो तो समय बहुत लगता है। जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की तो बाबा के पास कितने बच्चे थे, चलिए मैक्सिमम 400 बच्चे लगा लीजिए। और उस समय की दुनिया की आबादी कितनी थी, जब बाबा ने यज्ञ की शुरुआत की 1936-37 में, तो अकेले भारत की जनसंख्या 35 करोड़ के आसपास थी, 30-35 करोड़ के आसपास थी। अकेले भारत की अगर 30-35 करोड़ थी तो सारी दुनिया की 1.5 अरब तो होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, 2 अरब भी हो सकती है। अब 400 बच्चों को अगर 1.5 अरब और 2 अरब लोगों को ज्ञान का संदेश देना हो तो समय कम है कि ज्यादा है? बच्चे हैं 400, संदेशवाहक हैं 400, और संदेश पहुंचाना है समझिए 1.5 अरब के पास, तो क्या उन बच्चों को सोने की फुर्सत होगी, खाने की फुर्सत होगी, व्यर्थ सोचने की फुर्सत होगी? वो तो अपने एक एक मिनट में, एक एक घंटे जितना, एक एक दिन जितना काम करें तब भी कम पड़े, इतना उनका समय का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तब जाकर के वो 1.5 अरब लोगों की शांति की प्यास बुझा सकते हैं। फिर धीरे धीरे यज्ञ में वृद्धि हुई, 14 साल तक तो समझिए 400 बाबा के बच्चे रहे, उसके बाद आबू में आए, बच्चों की बढ़ोतरी हुई। लेकिन जितने बच्चे बढ़े, बच्चों को जिनकी सेवा करनी थी वो तो उससे तीव्र गति से बढ़े। आज हम कितने हैं, चलिए हम 8 लाख हैं या 9 लाख हैं, लेकिन दुनिया की आबादी कितनी है? दुनिया की आबादी तो कोई 7 अरब कहता है, कोई 6.5 अरब कहता है, कोई 6 अरब भी कहता है, चलिए 6 और 7 अरब के बीच में है। तो केवल 8 या 9 लाख बच्चों को, 6 या 7 अरब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देनी हो, भगवान का संदेश देना हो, उनमें से कईयों को राजा के लायक, कईयों को रॉयल फैमिली के लायक, कईयों को साहूकार प्रजा के लायक, कईयों को साधारण देवी देवता के रूप में बनाना हो, कईयों को भक्त बनाना है, और कईयों को केवल संदेश दे करके मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति करानी है। इतना सारा काम है, करने वाले केवल 8 लाख हैं और सेवा लेने वाले 6 या 7 अरब हैं। समय कम है कि ज्यादा है? कितना तेज दौड़ना चाहिए इतने अरब लोगों तक पहुंच बनाने के लिए? क्या हमारे पास व्यर्थ के लिए समय है? जिसके पास इतना समय पड़ा हो, इतना कारोबार पड़ा हो, इतनी ड्यूटी पड़ी हो जिसकी, और वो भी कोई साधारण ड्यूटी नहीं है, बहुत ऊंची ड्यूटी है, 21 जन्मों के लिए उनका भाग्य बनाना है, तो क्या हमारे पास है समय व्यर्थ सोचने का, व्यर्थ कर्म करने का, आलस्य करने का, बीती हुई बातों को याद करने का, भविष्य की चिंता करने का, अलबेले रहने का, एक दूसरे को देखने में समय गंवाने का, एक दूसरे की कही हुई बातों को चुभाने का, फिर उसका चिंतन करने का? क्या इन सब चीजों के लिए हमारे पास समय है? इतनी बड़ी ड्यूटी भगवान ने दी है, सबसे ऊंची ड्यूटी। इतनी ऊंची ड्यूटी तो प्रधानमंत्री की भी नहीं है, क्योंकि उसको भी केवल भारत के ही लोगों को संभालना है। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चे तो विश्व सेवाधारी हो, सारे विश्व की आत्माएं, और ना केवल आत्माएं लेकिन 5000 साल से जो प्रकृति के तत्व पतित बन गए हैं, जल के अंदर कितना प्रदूषण, वायु में कितना प्रदूषण, धरती कितनी प्रदूषित, तो इन 5 तत्वों से अगर सतयुग में सेवा लेनी है तो इनकी भी प्योरिफिकेशन का काम अभी होना है। तो ना केवल आत्माएं लेकिन प्रकृति सबको प्योरिफाई करना है। और फिर हम कहते हैं बाबा 73 साल तो हो गए, बाबा कहते हैं बच्चे अब भी ये स्मृति में रखो कि अगली दिवाली नहीं आएगी, इतना तेज गति से दौड़ो। पुरुषार्थ का समय निकल गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय बचा है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करेगा तो गैलप करेगा, बाकी पुरुषार्थ की तो कई कैटेगरी हो गई, जो थोड़ा सा याद कर ले वो भी पुरुषार्थी, जो थोड़ा ज्यादा याद कर ले वो भी पुरुषार्थी, पुरुषार्थी तो सब। लेकिन बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी। और तीव्र पुरुषार्थी का मतलब क्या है? जैसे अपने को तेज गाड़ी दौड़ानी हो सड़क पे तो कैसे तेज दौड़ेगी? 10 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे तो कोई भी गाड़ी चल जाएगी। लेकिन अपने को 100 और 120 की स्पीड पे गाड़ी चलानी हो तो क्या करना पड़े? उसकी सब चीजें एक्यूरेट हो, एकदम उसके पहिए में हवा भी पूरी हो, डीजल भी फुल हो, स्टेयरिंग भी ठीक हो, ब्रेक भी तेज हो, सब चीजें ठीक हो, तब तो वो तेज दौड़ेगी। तो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ का मतलब है कि केवल मन लगा दिया नहीं, केवल तन लगा दिया नहीं, तन मन धन संपर्क संबंध सब कुछ बाबा के लिए समर्पित, इनमें से एक भी चीज वेस्ट ना जाए, एक भी चीज ढीली ना हो, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। और एवर रेडी भी, किस किस बात में एवर रेडी? जैसे बच्चा पढ़ाई पढ़ता है तो बच्चे आपस में बातें करते हैं, कहते हैं भाई मेरी मैथ्स की तो पूरी तैयारी है पर अभी इंग्लिश का सिलेबस मेरा कुछ बचा हुआ है, मुझे पढ़ना है। या कहेगा मेरी सोशल स्टडी तो ठीक है लेकिन साइंस का अभी कुछ बचा हुआ है। तो एवर रेडी किस स्टूडेंट को कहेंगे? जिसने चारों सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को कवर कर लिया। तो हमारे भी कितने सब्जेक्ट हैं? 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा। क्या हम चारों में एवर रेडी हैं? या ज्ञान तो हमको बहुत आ गया लेकिन जरा योग के सब्जेक्ट में अभी कमी है, बुद्धि जहां लगाता हूं वहां लगती नहीं है, या धारणा के सब्जेक्ट में कमी है, इंद्रियां कभी कभी धोखा दे जाती हैं, या सेवा के सब्जेक्ट में कमी है, मैं तन से तो सेवा करता हूं लेकिन मन से नहीं कर पाता हूं, तो क्या कहेंगे? एवर रेडी हुए क्या? अभी हमारे चारों सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं है तो एवर रेडी कैसे माने जाएंगे? तो बाबा कहते हैं जो एवर रेडी बच्चे हैं उनके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट है, कभी भी उनका इम्तिहान ले लो वो तैयार मिलेंगे। जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा का बनते ही क्या कहते हैं? पाना था सो पा लिया, भगवान मिल गया, अब कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। और जब बाबा से ज्ञान सुनते हैं तो क्या कहते हैं? जो जानना था सो जान लिया, अब बाकी कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है। लेकिन हमको अपने से ये प्रश्न पूछना है कि क्या सचमुच हम जो जानना चाहते थे वो हमने सब कुछ जान लिया? क्या अज्ञान अंधकार से हम पूरी तरह बाहर निकल आए? क्या अभी जानने की कोई बात बाकी नहीं है? क्या हमारे मन में कोई प्रश्न पैदा नहीं होते हैं? क्या हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए? क्या हमने भगवान को जान लिया? जैसे नए भाई बहनों के आगे ज्ञान सुनाते हैं तो कहते हैं भाई आज का हमारा टॉपिक है भगवान क्या करता है और भगवान क्या नहीं करता है, तो उसमें अपन बताते हैं वो स्थापना करता है, पालना करता है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं दुनिया में भगवान मौत देता है, भगवान जन्म देता है, या भगवान दुख भी देता है, भगवान सुख भी देता है, तो अपन कहते हैं ये काम भगवान नहीं करता है, वो दुख नहीं देता, वो मृत्यु नहीं देता। तो ऐसे भ्रांतियों को क्लियर करते हैं नए लोगों के आगे। लेकिन बाबा हम बच्चों से पूछता है कि आप नए लोगों को तो बताते हो कि भगवान क्या करता और क्या नहीं करता है, लेकिन आपको पता है कि भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता है? भगवान क्या सोचता है? भगवान क्या चाहता है? भगवान के दिल में क्या है? भगवान अपने बच्चों को कैसा देखना चाहता है? मालूम है भगवान के दिल में क्या है? भगवान को जान लिया तो भगवान के दिल को भी जान लिया ना, लेकिन भगवान के दिल में क्या है मालूम है? क्या है भगवान के दिल में? जैसे लोग कहते हैं भाई किसी के दिल की था पानी बड़ी मुश्किल होती है, तो जब दिल की था ही नहीं पाई तो फिर जाना क्या? दिल को जानना ही तो किसी को जानना होता है ना। तो भगवान के दिल की था पाई, भगवान के दिल में क्या है? भगवान ने कभी अपना दिल खोला? बाबा हम बच्चों को जो मुरली सुनाती हैं वो मुरली ही भगवान का दिल है। जब कोई बहुत अंदर की बातें किसी को सुनाता है तो क्या कहता है? भाई मैंने अपना दिल खोल के तुम्हारे सामने रख दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे जो मर्जी करो, मेरा काम था अपना दिल खोलना, मैंने खोल दिया। तो ऐसे ही भगवान भी बाबा भी हम बच्चों से मिलने आते हैं और अपना दिल खोल के रख देते हैं, अब बच्चों तुम्हारी मर्जी है, मैंने अपना दिल खोल दिया, तुमको जो करना है वो करो। और उस दिल खोलने में बाबा सब बातें सुना देते हैं, बाबा की आशाएं क्या हैं, बाबा बच्चों से चाहते क्या हैं, बाबा के दिल में बच्चों के लिए प्यार कितना है, बाबा बच्चों की कितनी कितनी बातें सुनते हैं, सब बातें परत दर परत बाबा खोल के बता देते हैं। बाबा कोई बात छिपा करके नहीं ले जाते हैं, बाबा बच्चों के आगे बिल्कुल ओपन। तो जब कोई अपना दिल खोल के रख दे तो सामने वाले का फर्ज क्या बनता है? जब कोई दिल की बात सुनाए तो सामने वाले का फर्ज क्या बनता है? दिल की बात को सम्मान देना, ध्यान से सुनना और फिर उसको पूरा भी करना। तभी तो कहेंगे भाई इसने दिल खोला और इसने इसका सम्मान किया, नहीं तो कहेंगे इसने दिल खोला और ये देखो मुंह फेर के चला गया। इसको तो कोई एहसास ही नहीं है कि कोई अपना दिल मेरे सामने खोल रहा है, ये देखो ये मुंह फेर के जा रहा है, अरे ये तो बिना रहम का व्यक्ति है। तो बाबा अपना दिल खोले और हम ध्यान से सुने ही ना, याद भी ना रखें भगवान के दिल में क्या था, उसने क्या कहा था, और उसको पूरा भी ना करें, तो हम भी कैसे बच्चे हुए, बेदर्दी बच्चे जिनको कोई दर्द नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं अपना दिल खोलता हूं तो मेरे दिल को अपने दिल में समा लो, उसको याद रखो और उसको पूरा करो, नहीं तो मैं आपके अलावा और किसके सामने खोलूंगा, है दुनिया में कोई और जिसके सामने भगवान अपने दिल की बात सुनाई, है कोई और, बच्चों के अलावा और कोई नहीं है, और बच्चों के आगे बाबा सब सुनाता है, तो बच्चों को तो कुर्बान जाना चाहिए कि भगवान ने सब कुछ सुना दिया, भगवान आपने ऐसी मेहरबानी की, हम तो अगर आप एक शब्द सुनाते ना तो भी कुर्बान हो जाते, और आपने तो एक शब्द क्या पूरी गंगा बहा दी, समुद्र हमारे पे उलेंड दिया, भगवान आपने सब कुछ बता दिया, अब हम आपने जो बताया उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तब कहेंगे कि हाँ ज्ञान के सब्जेक्ट में हम पूरे हैं, भगवान ने जो सुनाया वो सब कुछ हमने सुना समझा और उस पर अमल भी किया, तब ज्ञान की सब्जेक्ट पूरी है, अमल किया तब पूरी है, अमल नहीं किया तो अधूरी है, जो भगवान ने कहा उस पर अमल हो गया तो पूरी हो गई, एवर रेडी हो गई, अभी इतना अमल हुआ है इतना बाकी है तो एवर रेडी नहीं हुए ना ज्ञान की सब्जेक्ट में, तो आज चेक करना कितना सिलेबस बाकी है, जैसे बच्चे गिनती करते हैं भाई कुल 40 पाठ थे उसमें से 21 पूरे हो गई 19 बाकी हैं, तो कितना हमने अमल किया ज्ञान की बातों पर और कितना अमल बाकी है, आज ये चेकिंग करेंगे। और योग की सब्जेक्ट, योग की सब्जेक्ट में एवर रेडी का मतलब क्या है, एवर रेडी योगी का मतलब क्या है, जो अपने मन का मालिक हो, और एवर रेडी का मतलब क्या है, ऐसा योगी जो जब चाहे जहां चाहे जितनी देर चाहे अपने मन को लगा ले, उसका मन परेशान ना हो कि तूने इतनी देर मुझे यहां क्यों बिठा दिया, मैं तो परेशान हो गया जल्दी हटा मुझे यहां से, इसका मतलब मन को सधाया नहीं है अभी, जो घोड़ा सधा हुआ नहीं होता ना वो जैसे मालिक कहे वैसे नहीं चलता, वो अपने ढंग से छलांग मारता है, मालिक बोलेगा इधर और वो जाएगा इधर, तो क्या कहते हैं देखने वाले भाई इसको सधाने की जरूरत है, अभी ये सधा नहीं है इसको सधाओ, तो अगर मालिक कहे मन तुम जाओ परम धाम, और वो परम धाम क्या थोड़ी ऊंचाई तक जाते ही फिर फिसल जाए, इसका मतलब घोड़ा अभी सधा नहीं है पूरा, अभी आप कहीं कहते हो और वो छलांग कहीं लगाता है, तो योग की सब्जेक्ट पूरी कैसे होगी, इसलिए बार बार मन को सधाने का अभ्यास चाहिए, बाबा ड्रिल करवाते हैं बच्चे एक सेकंड में शरीरी बनो, एक सेकंड में परमधाम पहुंच जाओ, एक सेकंड में फरिश्ता बनो, तो बाबा इस घोड़े को सधाने में कितनी मदद करता है, घोड़ा हमारा और सधाने की मेहनत करे भगवान, तो बाबा कहते हैं अपने मन के मालिक बनो, जैसे हाथ हमारे वश में है ऐसे ही मन को वश में रखो, फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप, आगे बात का चिंतन नहीं खत्म, इतना आज्ञाकारी चाहिए मन, जैसे कई लोगों के बच्चे बड़े आज्ञाकारी होते हैं, माने का यही बैठना है बैठ जाएंगे, यही खाना है खा लेंगे, यही पढ़ना है पढ़ेंगे, तो हमारा मन भी इतना आज्ञाकारी हो, यही सोचना है, यही चिंतन करना है, वैसे ही करें, तब कहेंगे हम योग के सब्जेक्ट में एवर रेडी हैं। चैलेंज करेंगे फिर हम, कुछ भी हो जाए, कभी भी हो जाए, हमारा मन हमको धोखा नहीं दे सकता। बाबा जो भी टचिंग देगा मन पकड़ेगा, हमारा मन इतना स्थिर है बाबा की टचिंग को कैच करेगा, और फिर खुशी होगी कि भाई मैं तो रेडी हूँ। जिस विद्यार्थी को पाठ याद होता है वो खुश रहता है, जिसको पाठ याद नहीं होते वो उलझा रहता है, मुंझा रहता है, कैसे करूँ, कब करूँ, सिलेबस तो बहुत पढ़ा है मैंने, तो थोड़ा ही किया है, पता नहीं आखिरी तक होगा कि नहीं होगा, कई तरह के प्रश्न आते हैं मन में। और जो समय से पहले तैयार है वो खुश रहेगा, परीक्षा सामने खड़ी है पर खुश रहेगा, बोलेगा कितनी कभी भी आए मैं रेडी हूँ। तो हम बच्चे जितना जितना मन के मास्टर बनते जाते हैं उतने निश्चिंत होते हैं, उतनी खुशी आती है, उतना निर्भय बनते हैं। तो आज ये भी चेकिंग करेंगे कि मन कितना कहना मानता है, कितनी परसेंटेज में कहना मानता है, और जितनी परसेंटेज में नहीं मानता उसको सिखाएंगे, अभी सधाएंगे, अभी और सधाने की जरूरत है। और तीसरा सब्जेक्ट है धारणा का। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे ये पहला सब्जेक्ट है, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष बच्चे इसी सब्जेक्ट से करेंगे। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, बच्चों में बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए, हमारी धारणा हमारी रॉयल्टी को प्रत्यक्ष करती है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, बहुत रश हो उसमें हम कैसे चलते हैं, बहुत रश में हम कैसे बोलते हैं, बहुत रश है उसमें हम कैसे भोजन लेते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं। खाली टाइम में रॉयल्टी नहीं दिखती, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो कौन रॉयल्टी को देखेगा। लेकिन रॉयल्टी की चेकिंग कब होती है, जब बहुत लोग होते हैं, जब रश होता है, तब हमारी परीक्षा हम आप पे ही ले सकते हैं। भाई इतने रश में मैंने धैर्य के साथ लाइन को क्रॉस किया, धैर्य के साथ चीज उठाई, धैर्य के साथ थोड़ा इंतजार किया, धैर्य के साथ सामने वाले से बात की, हैं तो बहुत सारे लोग, क्या इतने लोगों के होते हुए मैंने अपने धैर्य को बना करके रखा, सामने वाले को तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखा, मेरी एक सुविधा के कारण कईयों को असुविधा ना हो इस बात की चेकिंग की, मेरे थोड़े से फायदे में कईयों का बहुत सारा नुकसान ना हो जाए, क्या मैंने इस बात को ध्यान में रखा। अगर इन बातों की बार बार चेकिंग करते हैं तो समझो धारणा के सब्जेक्ट में परफेक्ट, कोई देखे या ना देखे लेकिन मेरा संस्कार ऐसा बन गया है, मेरी आदत ऐसी है कि कोई मुझे देखे या ना देखे लेकिन मेरे को मिठाई बोलना है, कोई मेरे को देखे या ना देखे मेरे को लाइन में ही चलना है, कोई देखे या ना देखे लेकिन मैंने किसी दूसरे की चीज को हाथ लगाना ही नहीं है। भक्ति मार्ग में कहते हैं पर धनम लोष्टवत पर दारम मातृवत। साधु सन्यासी कहते थे दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो और दूसरे की स्त्री को माता के समान समझो। ये तो ऋषि मुनियों ने मंत्र दिया था ताकि भारत थोड़ा थमा रहे, विश्व थोड़ा थमा रहे, और भक्ति मार्ग में ऐसे मंत्रों के सहारे लोगों ने अपनी इंद्रियों पर थोड़ा बहुत नियंत्रण भी रखा। लेकिन ये तो ज्ञान मार्ग है, वो भक्ति मार्ग था, वो उपदेश करने वाले ऋषि मुनि थे, और ये उपदेश करने वाला ऋषियों का भी परम ऋषि स्वयं परमात्मा है, तो जरूर उससे भी ऊंचा उपदेश करेगा। तो भगवान ने हमको क्या कहा है, पर धनम लोष्टवत नहीं, लेकिन निज धनम लोष्टवत। अरे दूसरे के धन तो ढेले के बराबर है ही है, लेकिन अपना धन भी तो ढेले के बराबर ही है, वो भी ढेले के बराबर बनने वाला है। इसलिए दूसरे के धन में तो आंख जानी नहीं चाहिए, दूसरे की चीज में तो आंख जानी नहीं चाहिए, अपनी चीजें भी सफल कर लो। अगर इन ढेलों को सफल किया तो ये सोने बराबर हो जाएंगे, नहीं तो ये भी ढेला ही रहेगा। ढेला कहते हैं मिट्टी के टुकड़े को। और पर दारेशु मातृवत, दूसरे की नारी माता के समान, ये तो भक्ति की बात थी। ज्ञान में तो भगवान ने क्या सिखाया, अपनी नारी भी माता के समान है, वो भी देवी है। तो बाबा ने हम बच्चों को अनासक्त बना दिया। हमारी आंखें किसी में डूब नहीं सकती। जिन आंखों ने भगवान को देख लिया, अब वो आंखें इस कब्रिस्तान को और कब्रिस्तान की चीजों को क्या देखेंगी। जब हम कहते हैं पाना था सो पा लिया, तो अब और क्या क्या पाने की इच्छा रह गई। सर्वोच्च को पा लिया, अब छोटी छोटी चीजें पाने की इच्छा नहीं रह सकती। तो धारणा के सब्जेक्ट का मतलब क्या है, आंखें डूब नहीं सकती कहीं, कान गलत सुन नहीं सकते, मुख गलत बोल नहीं सकता, हाथ जो छूने योग्य नहीं है उसको छू नहीं सकते, क्योंकि मेरी इंद्रियां कमल तुल्य हैं। मुझे लक्ष्मी बनना है, नारायण बनना है, तो कमल तुल्य उनकी इंद्रियां कब बनी, संगम युग पर बनी। तो मेरी इंद्रियां कमल तुल्य हैं, इनको मैं कीचड़ में डुबो नहीं सकता। घड़ी घड़ी इंद्रियों की चाल को देखना है, ये प्रभावित तो नहीं हो रही, किसी को देख तो नहीं रही, किसी में अटक तो नहीं रही, किसी पर आकर्षित तो नहीं हो रही, किसी वस्तु व्यक्ति वैभव का लालच तो नहीं आ रहा। अगर आ भी जाए तो वापस खींचो। जैसे बच्चा गलत चीज को छूने लगे तो माँ बाप क्या करते, नहीं बेटा ये अच्छी चीज नहीं है। तो आत्मा इंद्रियों की मालिक है, बार बार इनको सिखाए कि नहीं ये चीज देखने की नहीं है, आकर्षित होने की नहीं है। आकर्षित होने योग्य तो केवल भगवान है, वो मिल गया, अब किसी पर आकर्षित नहीं होना। देखने योग्य भगवान है, उसको देख लिया, अब क्या देखेंगे, सब उससे नीचे की चीजें हैं, उससे ऊपर की तो है नहीं। और सेवा के सब्जेक्ट में एवर रेडी का मतलब क्या है, सेवा कई तरीकों से होती है, समय श्वास संकल्प सब सेवा में समर्पित। ऐसे नहीं मैंने थोड़ा सा स्थूल काम कर दिया, देखो मैंने सेवा तो कर ही दी। बाबा कहते हैं बच्चे गिनती नहीं करते हैं, जिसको अपना भाग्य बनाना होता है ना वो गिनती नहीं करता। गिनती कौन करता है, गिनती तो मजदूर करता है, नौकर गिनती करता है, कहेगा देखो मैंने 8 घंटे नौकरी की, अब मुझे 8 घंटे की पे दे दो, मैंने 4 घंटे काम किया, मुझे 4 घंटे का काम दे दो। ये तो नौकर करता है, लेकिन जो मालिक होता है वो क्या करता है, वो गिनती थोड़े करता है, रात को 12 बजे आएंगे करता रहेगा, सुबह भी जल्दी उठेगा, स्पीड से भी करेगा। और किस तरह से करता है मालिक काम, कम से कम खर्च हो और अधिक से अधिक आमदनी हो। जैसे एक मोटा मिसाल है, घर में बहनें अगर बर्तन मांजेंगी तो कैसे मांजेंगी, बोलेंगी विम कम से कम खर्च हो पर बर्तन बढ़िया से बढ़िया मांजे। और नौकरानी मांजेगी तो खूब खुला विम लगाएगी लेकिन रगड़ेगी कम, बर्तन चाहे साफ हो चाहे ना हो। दोनों में अंतर क्यों है, क्योंकि एक नौकर है और एक मालिक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे साधन कम से कम और सेवा अधिक से अधिक, क्योंकि हम सब बच्चे कौन है, भगवान के इस यज्ञ के कौन है, मालिक है ना, बालक सो मालिक। तो मालिकों का क्या कर्तव्य है? अपने घर की हर चीज को देखना, मालिक बनकर के हर एक चीज को संभालना। हम सदाई मालिक हैं, असली घर हमारा यही है। ये नहीं सोचने का कि हम तो दो दिन के बाद जाने वाले हैं, चार दिन के बाद जाने वाले, जाएंगे भी तो वापस फिर कहाँ आना है? फाइनल मंजिल कौन सी है? जाएंगे भले, वापस फिर यही आना है। असली घर तो यही है, अंत तो यही होना है। तो असली घर जब यही है तो इसकी एक एक चीज बहुत प्रिय है हमको, और वो इसलिए भी प्रिय है क्योंकि वो भगवान की है। लोग मंदिर में जाते हैं तो जो पौड़ी होती है ना, तीन चार पौड़ियां चढ़ते हैं, उनको भी देखो माथा लगाते हैं, उनको भी बहुत रिगार्ड देते हैं, उनको भी हाथ लगा के ऐसे माथे से लगाते हैं। मंदिर की तो बात क्या, मंदिर की पौड़ियां भी इतनी पूजनीय हैं। तो ऐसे ही बाबा का ये घर, चाहे इसका ईंट हो, पत्थर हो, पेड़ हो, पत्ता हो, सब कुछ क्या है हमारे लिए? क्या है ये मिट्टी? कैसी मिट्टी है ये? वो मिट्टी है जिसके ऊपर भगवान अवतरित हुआ है। वहां तो मंदिर में तो जड़ मूर्तियां हैं, फिर भी हम उसको कितना सम्मान देते। और ये कैसा मंदिर है जिसमें हम सब कितने चेतन देवता बैठे हैं? वहां तो एक देवता की मूर्ति होगी, दो देवताओं की मूर्ति होगी, चलो 20 की मूर्ति होगी, यहाँ कितने चेतन देवता बैठे हुए हैं। तो ये मंदिर कितना कीमती है। तो इस मंदिर का तो एक एक कण पूजनीय है, माननीय है, सम्मान के योग्य है। और फिर बाबा कहते हैं बच्चे बहुत काल भक्ति मार्ग की गीता में अर्जुन ने भगवान को कहा कि भगवान सदगति का सही तरीका क्या है? तो भगवान ने कहा कि जो अंत समय मुझे याद करे उसको सदगति मिलेगी। तो अर्जुन ने कहा ये तो बहुत सरल है। भगवान ने कहा अर्जुन अंत समय में मेरी याद किसको आएगी? किसको आएगी? जिसने बहुत काल मुझे याद किया होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अंतमति तो श्रेष्ठ गति तब होगी जब हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा। इसलिए बार बार अंडरलाइन, बहुत काल, बहुत काल। ओम शांति।